بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے بی اے بی ایس سی بی کام جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ صفحہ نمبر 110 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 11. روس سے آزادی حاصل کرنے والی مسلم ریاستوں کے نام درج ذیل ہیں. نمبر 1 قازقستان, نمبر 2 ازبکستان, نمبر 3 کرغستان, نمبر 4 تاجکستان, نمبر 5 ترکمانستان, نمبر 6 آذربائیجان. پاکستان کے ساتھ ان مسلم ریاستوں کے تعلقات کے بارے میں مختصراً بیان کیا جاتا ہے. پاکستان اور قازقستان کے تعلقات. روس سے آزادی حاصل کرنے والی یہ ریاست وسط ایشیا کی ریاستوں میں رقبے کے لحاظ سے عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست ہے. پاکستان اور قازقستان کے تعلقات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. قازقستان کی آزادی. سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے کے چند روز بعد ہی پاکستان نے قازقستان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ ہی سفارتی تعلقات بھی استوار کر لیے. پاکستان نے 22 فروری 1992 کو قازقستان میں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا, جس سے دونوں ممالک کے درمیان مزید تعلقات مضبوط اور مستحکم ہو گئے. اقتصادی تعاون کی تنظیم کی رکنیت. قازقستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے تہران اجلاس 2 فروری 1992 میں بطور مبصر شرکت کی, لیکن پاکستان کی کوششوں نے نومبر کے اسلام آباد اجلاس میں قازقستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی رکنیت حاصل کر لی. درآمدات و برآمدات. قازقستان مختلف ممالک روس, ترکی, جرمنی, یوکرائن اور پاکستان کو آئل, خام مال, معدنیات, گوشت, بلہ, اون, کیمیکلز وغیرہ برآمد کرتا ہے اور اس کے بدلے مشینری, صنعتی خام مال, تیل اور گیس درآمد کرتا ہے. اقتصادی تعاون. پاکستان نے قازقستان کو 1992 میں مختلف اشیاء مثلا ادویات, آلات و مشینری, ٹیکسٹائل مصنوعات کی خریداری کے لیے $1 کروڑ کا قرضہ فراہم کیا. اس کے بعد قازقستان نے پاکستان میں سیمنٹ فیکٹری کے لیے $5 کروڑ دینے کا اعلان کیا. 1993 میں ایک معاہدے کے تحت پاکستان قازقستان کو 2000 ٹن یومیہ پیداوار کا سیمنٹ پلانٹ دے گا. مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. پاکستان اور قازقستان کے درمیان 1994 کو مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس ہوا, جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی, ثقافتی, تجارتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی جیسے معاملات پر بات چیت ہوئی. مذہبی تعلقات. قازقستان ایک اسلامی ملک ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے مذہبی تعلقات ہیں. دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتی ہے اور دونوں ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں. دفاعی تعلقات. قازقستان ایک زرعی ملک ہے. اس کے پاس بہترین فوج اور نیوکلیائی طاقت ہے. پاکستان, ایران, ترکی اور افغانستان کے پاس مضبوط مسلح افواج ہیں. اس طرح وہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ مضبوط فوجی معاہدے سے منسلک ہو کر ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن سکتے ہیں اور یہ اسلامی بلاک روس کی جگہ لے سکتا ہے. پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات. ازبکستان کی سرزمین اسلامی تہذیب کا گہوارہ رہی ہے. 1925 میں روس کے قبضے میں چلا گیا. سوویت یونین کے خاتمے پر 1991 میں ایک آزاد ریاست بن گئی. یہاں کا مذہب اسلام ہے اور تاشقند اس کا دارالخلافہ ہے. پاکستان میں آزاد ہونے والی ریاستوں میں سب سے پہلے ازبکستان سے رابطہ کیا تھا. تہذیبی اور ثقافتی تعلقات. ازبکستان اسلامی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے. سمرقند و بخارا بہت بڑے اسلامی تعلیم کے مرکز رہے ہیں. مسلمانوں کے مشہور محدث امام اسماعیل بخاری کا تعلق اسی خطے سے تھا. इसलिए मुसलमान इस खत्ते को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सकाफती कदरें मुश्तरक हैं। सफारती ताल्लुकात, उज़्बेकिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की तो पाकिस्तान ने उसकी आज़ादी के चंद रोज़ बाद ही उसकी आज़ाद हैसियत को तस्लीम कर लिया और 28 जून 1992 को पाकिस्तान ने अपना सिफारत खाना कायम कर दिया, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पैदा हुई। इक्तसादी तआवुन की तंजीम, उज़्बेकिस्तान ने रूस से आज़ादी के बाद फरवरी 1992 में इक्तसादी तआवुन की तंजीम ECO की रुकनियत हासिल की। ताशकंद की अहमियत, उज़्बेकिस्तान का दारुल खिलाफा इस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है क्योंकि 1965 की पाक भारत जंग बंदी का मुआहदा ताशकंद में हुआ था। दरामदातों बरामदात, उज़्बेकिस्तान में सोने के वसीय ज़खायर मौजूद हैं जो रूस के ज़खायर का एक तिहाई से ज्यादा हैं। उज़्बेकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक को सोना, खाद, सब्जियाँ, तेल, कपास वगैरह दरामद करता है, जबकि मशीनरी और खुराक वगैरह दरामद करता है। इसकी दरामदात और बरामदात का सिलसिला पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की हिमायत, उज़्बेकिस्तान ने कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश जाहिर की है और हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत की है। मुश्तरका वजारती कमीशन, दोनों ममालिक ने मुश्तरका इकतसादी तआवुन के फरोग के लिए मुश्तरका वजारती कमीशन के क्याम का ऐलान किया। वीजा पॉलिसी में नरमी, उज़्बेकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त के लिए 1993 में वीजा पॉलिसी में नरमी कर दी। इससे पहले वीजा पॉलिसी सख्त थी। किर्गिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात, किर्गिस्तान एक आज़ाद मुस्लिम रियासत है जिसमें मुसलमानों की आबादी की शराह 81% है। किर्गिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम है और शरह ख्वानदगी 100% है। किर्गिस्तान को 1936 में रूसी जमहूरिया का दर्जा हासिल हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरी। इस्लामी नज़रियात में यकसानियत, किर्गिस्तान एक इस्लामी रियासत है और यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। मुसलमान होने की हैसियत से पाकिस्तान के साथ इसके मजहबी और सकाफती रवाबित हैं। दोनों ममालिक इस्लामी भाईचारे के बंधन में बंधे हुए हैं। सिफारती ताल्लुकात, पाकिस्तान ने किर्गिस्तान की सोवियत यूनियन से आज़ादी के फौरन बाद एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लिया और इससे सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। पाकिस्तान ने 1994 में किर्गिस्तान में सिफारत खाना कायम करके इसके साथ ताल्लुकात को मजीद तकवीत दी। दरामदात और बरामदात, किर्गिस्तान की मईशत का 40% इन्हिसार ज़रात पर है। किर्गिस्तान सोना, मरकरी, कपास, ऊन, गोश्त, तंबाकू वगैरह दूसरे ममालिक अमरीका, बरतानिया, चीन, तुर्की वगैरह को बरामद करता है, जबकि टेक्सटाइल का सामान, मशीनरी और सनती मसनूआत वगैरह इन ममालिक से दरामद करता है। पाकिस्तान के साथ भी इसके वसीत तजारती ताल्लुकात हैं। इकतसादी तआवुन की तंजीम, किर्गिस्तान ने 1992 में इकतसादी तआवुन की तंजीम ECO की रुकनियत हासिल कर ली। पाकिस्तान इसका पहले ही रुकन था। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को ECO का रुकन बनाने के लिए किर्गिस्तान की इखलाकी और कानूनी मदद की। 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान अकवाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अकवामी और इलाकाई तंजीमों के दायरा कार में रहते हुए बाहमी तआवुन के कई माहदों पर समझौते हुए। कयाम अमन की कोशिशें, किर्गिस्तान ने कयाम अमन के लिए हमेशा पाकिस्तानी मौकफ की हिमायत की। कश्मीर और अफगानिस्तान के मसले को पुरअमन तौर पर हल करने की किर्गिस्तान ने पाकिस्तान की पॉलिसियों की हिमायत की। दोनों ममालिक ने अकवाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक अमन कायम करने की कोशिशों में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। इस सिलसिले में दोनों ममालिक ने 1994 में एशिया में क्याम अमन और तफ्तीश से असलहा के लिए एक दूसरे के साथ तआवुन मुहैया किया। शाहराहे कुराकरम की तोसी का मंसूबा, 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान शाहराहे कुराकरम के तोसी मंसूबे के समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते के मुताबिक शाहराहे कुराकरम को बैनुल अक्वामी मयार का बनाकर इसे किर्गिस्तान के दारुलहुकूमत तक तामीर किया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त की सहूलतों में इजाफा होगा। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ताजिकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इसकी आबादी का 80% हिस्सा मुसलमान है। 1929 में सोवियत यूनियन के जेर तसल्लुत आया। 1991 को सोवियत यूनियन के टूटने से आज़ादी मिली तो जमहूरिया ताजिकिस्तान का वजूद अमल में आया। तहजीबी और सकाफती वर्षा। ताजिकिस्तान में 8वीं सदी में इस्लाम का ज़हूर हुआ और अब यहाँ की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। मुस्लिम रियासत होने के नाते पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने तहजीबी और सकाफती मरासिम हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ताजिकिस्तान का क़याम। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद इसका शिराजा बिखर गया तो ताजिकिस्तान ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। ताजिकिस्तान ने 9 नवंबर 1991 में आज़ादी और खुद मुख्तारी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने चंद रोज़ बाद ही इसकी आज़ाद हैसियत को तस्लीम कर लिया और इसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात की इब्तिदा कर दी। तामीर और तरक्की में मदद। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पाँच सद बिलियन डॉलर का कर्जा दिया। बिजली की फराहमी का माहदा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक माहदे के तहत ताजिकिस्तान पाकिस्तान को 170 मेगावाट बिजली फराहम करेगा जो कि पैदा होने वाली बिजली का तकरीबन 20% है। दरामदात और बरामदात। ताजिकिस्तान में यूरेनियम और दीगर मादनी ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क में सीमेंट, केमिकल्स, खाद, घी और मशीनरियाँ तैयार करने के कारखाने मौजूद हैं। ताजिकिस्तान पाकिस्तान समेत बहुत से दीगर ममालिक को एल्युमिनियम, फल, कपास, घी वगैरह बरामद करता है और मशीनरी, केमिकल्स वगैरह दरामद करता है। पाकिस्तान ने 2 करोड़ डॉलर का कर्जा भी ताजिकिस्तान को तजारती सामान की खरीदारी के लिए दिया। ईसीओ की रुकनियत। ताजिकिस्तान ने 1992 में इकतसादी तरक्की की तंजीम ईसीओ की रुकनियत हासिल कर ली। पाकिस्तान इस तंजीम का पहले ही से रुकन था इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो गए। मसला कश्मीर। ताजिकिस्तान मसला कश्मीर को अक़वामे मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने की पाकिस्तानी पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करता है। तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तुर्कमानिस्तान का इलाका 1925 में सोवियत यूनियन के जेर कब्जा आया। सोवियत यूनियन से तुर्कमानिस्तान को 1991 में खुद मुख्तारी हासिल हुई। तुर्कमानिस्तान में 90% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इसका सरकारी मजहब इस्लाम है। वानदगी की शरह 99% है। अशकाबाद इसका दारुल खिलाफा है। यहाँ गैस और तेल के जखायर वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार और दोस्ताना बुनियादों पर इस्तवार हैं। मजहबी और सकाफती ताल्लुकात। तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी ममालिक हैं। दोनों का मजहब इस्लाम है। तुर्कमानिस्तान की आबादी की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है। दोनों की समाजी, मुआशी और तहजीबी रिवायात सदियों पुरानी और एक जैसी हैं। मुसलमान होने के नाते से दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात पाए जाते हैं। क़याम तुर्कमानिस्तान। 1991 में तुर्कमानिस्तान ने जब सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की तो पाकिस्तान ने इसे फौरन एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया और तुर्कमानिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को वसअत देने के लिए वहां पर अपना सिफारत खाना कायम कर दिया। तेल और गैस का मंसूबा। 1996 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान एक मुहायदा हुआ जिसकी रूह से तुर्कमानिस्तान के शहर दौलताबाद के रास्ते गवादर तक तेल और सूबे सिंध के शहर कंदकोट तक गैस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे 1,40,000 टन तेल योमिया और 2 बिलियन मुकब फिट गैस योमिया सप्लाई हो सकेगी। मुश्तरका वजारती कमीशन का क्याम। 1996 में दोनों ममालिक के दरमियान मुल्की और बैन अवी मसाइल के हल और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन के लिए मुश्तरका वजारती कमीशन के क्याम का ऐलान किया गया। बरामदात और बरामदात। तुर्कमानिस्तान में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक को कुदरती गैस, पेट्रोलियम, बिजली, कपास, कालीन, केमिकल्स वगैरह बरामद करता है और प्लास्टिक, रबर, मशीनरी और फूड वगैरह बरामद करता है। ईसीओ की रुकनियत। तुर्कमानिस्तान ने पाकिस्तान की कोशिशों से इकतसादी तरक्की की तंजीम ECO میں 1992 میں شمولیت اختیار کر لی، جس سے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان اقتصادی تعاون میں بہتری پیدا ہوئی۔ فضائی سروس کا آغاز 2 فروری 1994 میں پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت کا آغاز ہوا۔ کشمیر اور افغانستان کا مسئلہ، ترکمانستان نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ افغانستان کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ اس نے کشمیر کے مسئلے پر حکومت پاکستان کی کشمیری پالیسی کی مکمل حمایت کی۔ پاکستان اور آذربائیجان، آذربائیجان 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آذربائیجان میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں کی آبادی کا 87% مسلمان ہے۔ تیل اور گیس کی دولت سے ریاست مالا مال ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہیں۔ مذہبی و ثقافتی تعلقات، آذربائیجان کے اسلامی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ مذہبی اور ثقافتی تعلقات خوشگوار بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کی مذہبی اور ثقافتی قدریں مشترک ہیں۔ آذربائیجان کی آزادی کا خیر مقدم، آذربائیجان نے 1991 میں سوویت یونین سے آزادی حاصل کی تو پاکستان نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آذربائیجان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اقتصادی ترقی کی تنظیم کی رکنیت، آذربائیجان نے فروری 1992 اقتصادی ترقی کی تنظیم ECO کی رکنیت حاصل کر لی۔ پاکستان نے آذربائیجان کو ECO کا رکن بنانے میں اقتصادی و قانونی مشورے فراہم کیے۔ آذربائیجان کی معیشت کا دار و مدار، آذربائیجان کی ریاست تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس کے اس علاقے میں چاول، کپاس، پھل، سبزیاں، چائے، تمباکو اور مویشی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات پر اس کی معیشت کا دار و مدار ہے۔ پاکستان اور یورپی ممالک اس کے اہم تجارتی پارٹنرز ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تعاون کے سمجھوتے، نمبر ایک، 1992 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کے تحت مشترکہ آئل کمپنی قائم ہوئی۔ نمبر دو، 1994 میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اقتصادی، ثقافتی، سائنسی اور تعلیمی تعاون کے 3 معاہدے ہوئے۔ نمبر تین، 1994 میں دونوں ممالک کے درمیان ادویات کی تیاری اور پرائمری ہیلتھ کیئر منصوبے جیسے پروگراموں میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ بلا شبہ پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک، مسلم ممالک اور ان تمام ریاستوں سے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ باب نمبر تین، پاکستان کی معاشی ترقی و اہم مسائل۔ نمبر ایک، معاشی خد و خال، فصلوں کی صورتحال۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ ملک کی 70% آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ پاکستان کی برآمدات میں ایک بڑا حصہ زراعت کا ہے۔ ہمارے ملک کی زرعی پیداوار کا انحصار زمین کی نوعیت پر ہوتا ہے، یعنی زمینیں اناج، گندم، چاول، مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ بعض نقداور فصلوں، کپاس، گنا، تمباکو، تیل کے بیج وغیرہ کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح بعض علاقے پھلوں کی کاشت کے لیے اچھے ہیں۔ پاکستان میں زرخیزی، چکنی، ریتیلی، پتھریلی، دلدلی، سیم زدہ ہر قسم کی زمین موجود ہے۔ زرخیز زمین بھی کافی ہے جو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں ستلج، راوی، چناب، جہلم، کابل وغیرہ کی لائی ہوئی مٹی سے بننے والے میدانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں سال میں 2 قسم کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، فصل ربی۔ نمبر دو، فصل خریف۔ نمبر ایک، فصل ربی۔ فصل ربی کی کاشت اکتوبر نومبر کے مہینوں میں کی جاتی ہے اور اپریل مئی کے مہینوں میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ اس میں گندم، چنا، تمباکو وغیرہ اہم فصلیں ہیں۔ نمبر ایک، گندم۔ گندم ایک مشہور ربی کی فصل ہے، یہ تقریباً پورے ملک میں کاشت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ گندم صوبہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے۔ ملک کے تقریباً 45.6% رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ شرح خواندگی میں کمی اور دیگر سہولیات کی کمی کے پیش نظر ہمارے ملک میں گندم کی پیداوار ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تاہم حکومت پاکستان کی کوششوں سے ملک میں گندم کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم اور درجہ حرارت، गंदम की काश्त के लिए मौजूद तरीन दर्जा हरारत 50 से 80 डिग्री फॉरनहाइट के दरमियान है, और इसी तरह कटाई के लिए मौजूद तरीन दर्जा हरारत 80 से 100 दर्जे फॉरनहाइट है। इसीलिए गंदम की काश्त मौसम सरमा के शुरू यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में की जाती है, और कटाई मौसम गर्मा के शुरू यानी अप्रैल के आखिर या मई के शुरू में की जाती है। पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसे खत्ते में वाक़ है जहाँ के मौसमी हालात गंदम की काश्त के लिए इंतहाई साजगार हैं। ज्यादा पैदावार के इलाके। मुल्क में गंदम की पैदावार का 70% रकबा पाकिस्तान में रकबा पंजाब में पाया जाता है। पंजाब में गंदम की पैदावार में फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, कसूर, बहावल नगर, साहिवाल और पाकपतन के अजला बड़ी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा सूबे सिंध में हैदराबाद, नवाबशाह, घोटकी और सखर के अजला में गंदम की काश्त होती है। सूबे सरहद में पिशावर, बन्नू और मरदान के अजला में गंदम की काश्त की जाती है। इसी तरह सूबे बलोचिस्तान में आजाद कश्मीर में भी गंदम काश्त की जाती है। नंबर 2, चना। इस फसल का शुमार गजाई अजनास में होता है। इसकी काश्त खुश्क और रेतीले इलाकों में आसानी हो जाती है क्योंकि इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। चना इंसानों के अलावा जानवरों की खुराक के काम भी आता है। इसे भी मुल्क की फसल रबी में पैदा होने वाली अहम गजाई अजनास में शुमार किया जाता है। मौसम और दर्जा हरारत। चने की फसल का शुमार चूंकि रबी की फसलों में होता है, इसलिए गंदम की फसल की तरह चने की फसल को भी इसी मौसम में काश्त किया जाता है, जो चने की फसल के लिए भी मौजूद तरीन है। इस फसल को पानी की कम जरूरत होती है, इसलिए निस्बतन कम और खुश्क इलाकों में इसकी पैदावार ज्यादा होती है। ज्यादा पैदावार के इलाके। इस फसल की काश्त सूबा पंजाब में मियांवाली, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और थल के इलाकों में हो रही है। इसके अलावा ये फसल सूबा सिंध में सखर, खैरपुर और हैदराबाद के अजला में ज्यादा काश्त होती है। नंबर 3, तंबाकू। ये एक नशा आवर फसल है और गर्म मरतूब इलाकों में काश्त होती है। ये फसल 3 माह में पककर तैयार हो जाती है। तंबाकू को हुक्का वगैरह और सिगरेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू नोशी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से तंबाकू की काश्त भी बढ़ रही है। ताहम हुकूमत तंबाकू नोशी के असबाबी सद्देबाब के लिए कोशा है। मौसम और दर्जा हरारत। तंबाकू की फसल हमारे मुल्क में मौसम में बहार में काश्त की जाती है। इसकी फसल 2 से 3 माह में पककर तैयार हो जाती है। तंबाकू की फसल को काश्त करने के लिए इसके बीज से पनीरी तैयार की जाती है। बाद हजार जब पूरा पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो फिर पौधों को खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है। ज्यादा पैदावार के इलाके। पाकिस्तान में तंबाकू को काफी मकदार में काश्त किया जाता है। हम बहुत सा तंबाकू मुल्क की जरूरियात पूरी करने के बाद बैरूनी ममालिक को भी दरामद करते हैं। तंबाकू को ज्यादातर साहिवाल, ओकाड़ा, शिकारपुर, मर्दान, मस्तूंग और कल्लात में काश्त किया जाता है। फसल खरीफ की बुआई मई से जून तक होती है और अक्टूबर में कटाई होती है। इसमें गन्ना, चावल, कपास वगैरह अहम है। जरिए शोबा मुल्क की आबादी को खुराक फराहम करता है और बेशतर मुल्की सनतों को खाम माल भी फराहम करता है। हमारे यहाँ मुल्की पैदावार में जरात का हिस्सा 26.4% है। नंबर 1, कपास। कपास एक मशहूर खरीफ की फसल है। इसके सफेद रेशों से धागा और बीज से तेल वगैरह हासिल होता है। पाकिस्तान में इस फसल पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये एक मुनाफा बख्श और नकदावर फसल है। पाकिस्तान में काश्त होने वाली कपास को 2 बड़े इकसाम में तकसीम किया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा अमरीकन इकसाम मशहूर है। इसके बाद पाकिस्तान में ज्यादातर कपास की देसी इकसाम काश्त की जाती हैं। कपास की काश्त के लिए जरखेज दरियाई मिट्टी वाली जमीन ज्यादा मौजूद रहती है। कपास आमतौर पर कतारों में काश्त करते हैं और कतार से कतार का फासला कम अज कम 1.5 फिट और पौधे से पौधे का फासला 6 इंच रखा जाता है। मौसम और दर्जा हरारत। कपास की फसल को काश्त के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 80 से 100 डिग्री फारेनहाइट की जरूरत होती है। चुनाई के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 50 से 60 डिग्री फॉरनहाइट इसके लिए जरूरी होता है। इस लिहाज से सूबा पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके इसकी काश्त के लिए नहायत मौजू हैं। ज्यादा पैदावार के इलाके। कपास की काश्त ज्यादातर पंजाब और सिंध के नहरी इलाकों में होती है। सूबा पंजाब में कपास की काश्त ज्यादातर लाहौर, सरगोधा, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल और कसूर के अजला में की जाती है। सूबा सिंध में खासतौर पर हैदराबाद, खैरपुर और सक्कर के अजला में कपास की आला अकसाम काश्त की जाती हैं। सूबा सरहद में इसकी काश्त मर्दान, पिशावर, डी आई खान और बलूचिस्तान में लोरालाई और लजबीला के अजला में कपास की काश्त हो रही है। नंबर 3, गन्ना। ये भी एक मुनाफा बख्श और नफ दावर फसल है। इससे गुड़, चीनी, शकर वगैरह हासिल करते हैं, जबकि इसके छिलकों से कागज और गत्ता वगैरह तैयार होता है। पाकिस्तान में गन्ना ज्यादातर पंजाब में काश्त होता है। इसकी काश्त ज्यादातर ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पानी की वाफिर मकदार मौजूद हो। हमारे मुल्क में गन्ने की काश्त जमाने कदीम से राइज है और हमारे लिए मिठास हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में गन्ने की 4 अकसाम काश्त की जाती हैं, जिनमें B14, B19, CO537, CL175 वगैरह शामिल हैं। हमारे मुल्क में गन्ना ज्यादातर पंजाब के इलाकों में काश्त होता है। इसका तनासुब 73.5% है। सिंध में इसकी पैदावारी शरा 13% है और सिंध में सरहद में 13.5% है। मौसम और दर्जा हरारत। गन्ना काश्त करने के लिए मौतदिल दर्जा हरारत यानी 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट काफी मुनासिब रहता है। तहम अगरचा कुछ ज्यादा दर्जा हरारत हो भी जाए तो इसके लिए काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन कम दर्जा हरारत इसके लिए नुकसानदेह होता है। चुनाचा ऐसे इलाके जहाँ पर दर्जा हरारत नुकता इंजमात से कम रहता है या बर्फबारी होती है, वहां पर गन्ना काश्त नहीं किया जा सकता। हमारे मुल्क में गन्ना फरवरी और मार्च के महीनों में पक कर तैयार हो जाता है। गन्ने को एक मरतबा काश्त करने के बाद उससे 3-4 साल तक गन्ना हासिल किया जाता है और इसे हर साल काश्त नहीं करना पड़ता। ज्यादा पैदावार के इलाके। पाकिस्तान में गन्ने की काश्त हमारे 3 सूबों यानी पंजाब, सिंध और सरहद में की जाती है। सूबे पंजाब के नहरी इलाके जिनमें मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोधा, रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ के अजला शामिल हैं, इनमें काश्त किया जाता है। सूबे सिंध में सक्कर, हैदराबाद और नवाबशाह के अजला नुमाया है। इसके अलावा सूबा सरहद में पिशावर, बन्नू, डेरा गाजी खान और मर्दान के इलाकों में काश्त होती है। नंबर 3, चावल। चावल भी एक नफ दावर फसल है। पाकिस्तान में चावल की काश्त पंजाब और सिंध में सबसे ज्यादा होती है। इसे बरामद करके जर मुबादला हासिल किया जाता है। चावल को काफी मकदार में पानी की जरूरत होती है, इसलिए इसे ज्यादा बारिशों वाले इलाकों में काश्त किया जाता है। चावल पानी का पौधा कहलाता है। अगरचा हमारे मुल्क के जिन इलाकों में चावल काश्त किया जाता है वहां पर सालाना सालाना बारिश 20 इंच से कम होती है, जबकि इसकी पैदावार के लिए कुदरती तौर पर कम से कम 40 इंच सालाना बारिश दरकार होती है। चावल की काश्त के लिए ऐसी मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी की मकदार ज्यादा शामिल हो वो इसकी काश्त के लिए ज्यादा मौजू होती है। चावल को खेतों में काश्त करने से पहले छोटी छोटी क्यारियों में इसकी पनीरी तैयार की जाती है। जब चावल का पौधा 4 से 6 इंच का हो जाता है तो इसे खेतों में मुंतकिल कर दिया जाता है। आमतौर पर चावल के पौधों को कतारों में काश्त किया जाता है और कतारों का फासला कम से कम 6 इंच और पौधे से पौधे का फासला 3 इंच रखा जाता है। मौसम और दर्जा हरारत। चावल की काश्त के लिए कम से कम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत की जरूरत होती है, लेकिन जिन इलाकों में सख्त सर्दी होती है या जिन इलाकों में दर्जा हरारत नुकता इंजमात से कम हो जाता है वहां पर इसकी काश्त मुमकिन नहीं। चावल की काश्त हमारे मुल्क में मौसम गर्मा के शुरू में की जाती है और चावल गर्म मरतूब इलाकों की पैदावार है, लेकिन नीम गर्म इलाकों में भी काश्त किया जाता है। ज्यादा पैदावार के इलाके। पाकिस्तान में चावल की सबसे ज्यादा काश्त सूबे पंजाब और सिंध में की जाती है। सूबे पंजाब में सियालकोट, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरावाला के अजला में चावल की अच्छी इकसाम काश्त की जाती है, जो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है। इसके अलावा मुल्तान और बहावलपुर के इलाकों में भी चावल काश्त किया जाता है। सूबे सिंध में चावल ज्यादातर लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद के इलाकों में काश्त किया जाता है। इसके अलावा सूबे बलूचिस्तान, सूबे सरहद और कश्मीर के इलाकों में भी चावल काश्त किया जाता है, लेकिन इसकी पैदावारी शराह सूबे पंजाब और सिंध के इलाकों की नस्बत बहुत कम है। निज़ाम आबपाशी। पाकिस्तान का नहरी आबपाशी का निज़ाम दुनिया के बड़े आबपाशी के निज़ामों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान कि कुल काश्त शुदा रकबे का 70% का इन्हिसार नहरी आबपाशी पर है। पाकिस्तान में पांच मशहूर दरिया हैं जिनमें नहरों का आबपाशी के लिए एक आला निज़ाम कायम किया गया है। इसी निज़ाम की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा रकबे को जेर काश्त लाया गया है। जिन इलाकों में इस निज़ाम की बदौलत पानी नहीं पहुँच सकता, वहाँ बारिश के अलावा कुएं, ट्यूबवेल और कारेज आबपाशी के जराए हैं। जिन इलाकों में जेर ज़मीन पानी की गहराई ज़्यादा है, वहाँ बिजली से चलने वाले इंजनों या डीजल इंजनों के जरिए पानी हासिल किया जाता है, इन्हें ट्यूबवेल कहते हैं। सूबे बलूचिस्तान में जहाँ बारिशें कम होती हैं, वहाँ पहाड़ों के दामन से सुरंगें खोदकर जमीन दोज नहरें निकाली गई हैं, जिन्हें कारेज कहते हैं। पाकिस्तान के ऐसे मैदानी इलाके जहाँ जेर जमीन पानी की सतह करीब है, वहाँ कुओं से रहट के जरिए पानी निकाला जाता है। सिंतास मुहाइदा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में तय पाने वाला मुहाइदा सिंतास मुहाइदा कहलाता है। इस मुहाइदे की रूह से तीन मशरक़ी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी के पानी पर भारत का हक तस्लीम कर लिया गया और तीन मगरबी दरिया जहलम, सिंध और चनाब के पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया। तीनों मशरक़ी दरियाओं के पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक वसी मनसूबा तैयार किया गया, जिसे सिंतास मनसूबा कहते हैं। इस मंसूबे के तहत तरबेला डैम और मंगला डैम तामीर किए गए हैं, जहां पानी को जखीरा करने के अलावा पनबिजली की भी पैदावार की जाती है। इसके अलावा बहुत सी नहरें निकाली गई हैं, जिनकी मदद से मगरबी दरियाओं के पानी की कमी को पूरा किया जाता है। सिंतास मंसूबे की राबता नहरें। सिंतास मुहिदे की रूह से दरियाए रावी और सतलुज के भारत की मिल्कियत करार पाए थे। इन दरियाओं के पानी की कमी को पूरा करने के लिए सिंध तास मंसूबे के तहत सात नहरें निकाली गईं। ये नहरें दरियाए सिंध, जहलम और चनाब से निकालकर दरियाए रावी और सतलुज की नहरों में पानी डाला गया है। ये सफा नंबर 123 है, पार्ट नंबर 11 यहाँ मुकम्मल होता है।